एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे विशाल विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सचमुच दुनिया बदल दी, ब्रिटिश साम्राज्य।
जी नमस्कार। और ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है ना, इसकी जड़ें, इसका असर आज भी महसूस होता है।
बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम एक जाने माने इतिहासकार एशली जैक्सन, उनके काम का सहारा ले रहे हैं।
हाँ, जैक्सन की जो किताबें हैं उनके जरिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य जो कभी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर फैला था, आखिर था क्या और ये चलता कैसे था।
और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स, इतना फैला हुआ और हाँ, इतने विरोधाभासों से भरा हुआ सिस्टम, ये टिका कैसे रहा।
सही कहा। सिर्फ नक्शे पर वो लाल रंग का बड़ा सा धब्बा देख लेना काफी नहीं है।
बिल्कुल। उसकी परतें खोलना जरूरी हैं, क्योंकि उसकी विरासत, चाहे अच्छी कहें या बुरी, वो आज भी हमारे आसपास है, हमारी सीमाओं में, राजनीति में, समाज में।
तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले एशले जैक्सन के बारे में थोड़ी बात हो जाए। कौन है ये और क्यों इनका नजरिया इतना अहम है इस विषय पर?
हाँ, तो एशली जैक्सन जो है वो किंग्स कॉलेज लंदन में इंपीरियल और मिलिट्री हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास के बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं।
और उनकी खासियत क्या है, मतलब किस तरह से वो इस विषय को देखते हैं?
उनकी खास बात है उनका संतुलित नजरिया। वो न तो पुराने जमाने के इतिहासकारों की तरह सिर्फ साम्राज्य का गुणगान करते हैं,
अच्छा,
और न ही उन आलोचकों की तरह जो इसे सिर्फ बुराई का प्रतीक मानते हैं। वो इसे एक ऐतिहासिक सच्चाई की तरह देखते हैं, बहुत जटिल, जिसके कई पहलू थे।
मतलब न सिर्फ तारीफ, न सिर्फ निंदा, बल्कि उसे समझने की कोशिश।
हाँ बिल्कुल। और उनकी रिसर्च भी जबरदस्त है, दुनिया भर के आर्काइव्स से, ब्रिटिश नजरिए से भी और जिन पर राज किया गया उनके अनुभव से भी।
और वो साम्राज्य को किसी एक मोनोलिथिक चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि एक नेटवर्क की तरह, एक जाल,
रिश्तों का, व्यापार का, सत्ता का।
हाँ, एक डायनामिक नेटवर्क।
ये नजरिया वाकई से समझने में मदद करता है।
तो फिर उनकी किताबों का निचोड़ क्या है, मतलब उनका मुख्य तर्क क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में?
उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य कोई एक सेंट्रलाइज्ड चीज नहीं थी, ये एक पैचवर्क एम्पायर था।
पैचवर्क एम्पायर मतलब जैसे कपड़ों में पैबंड लगाते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। अलग अलग तरह के इलाके, अलग अलग तरह का शासन, अलग अलग हिट, इन सबको मिलाकर एक ढीला ढाला सा लगातार बदलता हुआ ढांचा बना था। कहीं सीधा कब्जा, कहीं राजाओं के जरिए हुकूमत, कहीं बस व्यापार।
तो मतलब कोई एक मास्टर प्लान नहीं था कि ऐसे ही बढ़ाना है साम्राज्य को?
लगता तो नहीं है। जैक्सन यही कहते हैं कि ये जरूरत और मौके के हिसाब से फैला और बदलता गया।
वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग टुकड़े जुड़े कैसे थे
और ये चला कैसे, इतने बड़े और बिखरे हुए साम्राज्य को मैनेज कैसे किया गया।
हाँ, और सबसे अहम, इसका असर क्या हुआ दुनिया पर, ब्रिटेन पर, जो आज तक दिखता है।
वो हमें उस अच्छा बनाम दुरा वाली सीधी कहानी से आगे ले जाते हैं,
पेचीदगियों में झांकने में मदद करते हैं।
बिल्कुल। और उनका विश्लेषण भी ग्लोबल है, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब शामिल है।
और सिर्फ अंग्रेजों की कहानी नहीं, जिन करोड़ों लोगों पर राज किया गया, उनके अनुभव, उनका संघर्ष, उनका सहयोग, वो सब भी इस तस्वीर का हिस्सा हैं।
तो चलिए अब इस पैचवर्क एम्पायर के कुछ धागे खोलते हैं, जैक्सन के विश्लेषण के जो मुख्य विषय हैं उन पर आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये साम्राज्य असल में बना कैसे था? क्या सब जगह एक जैसा था?
थे?
हाँ, जहाँ ज्यादातर यूरोपियन लोग जाकर बसे थे।
जी, और उन्हें काफी हद तक अपनी सरकार चलाने का अधिकार भी था, ब्रिटेन के साथ उनका रिश्ता अलग था।
और दूसरी तरफ था भारत, ताज का गहना।
बिल्कुल। इतनी बड़ी आबादी, इतने संसाधन, इतना जटिल समाज, वो बिल्कुल अलग मामला था। वहाँ सीधा ब्रिटिश शासन भी था और स्थानीय राजाओं नवाबों के जरिए अप्रत्यक्ष शासन भी।
हाँ, वो मिला जुला मॉडल था और ये साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर था।
फिर थी हांगकांग या सिंगापुर जैसी क्राउन कॉलोनीज, छोटी मगर व्यापार और नेवी के लिहाज से बेहद अहम। इन पर लंदन से सीधा कंट्रोल था।
और अफ्रीका या मिडिल ईस्ट में प्रोटेक्टोरेट थे।
हाँ, जहां लोकल शासकों से संधियां करके उनकी विदेश नीति और संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया, पर वो नाम के शासक बने रहे।
अच्छा।
और फिर पहले विश्व युद्ध के बाद आई मैंडेट वाले इलाके जैसे फिलिस्तीन या इराक, जिन्हें लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को सौंपा था। तो साफ है, कोई एक साइज का जूता सबके पैर में फिट करने की कोशिश नहीं थी।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने अलग अलग तरह के इलाकों को, इतनी विशाल दुनिया को, मतलब मुट्ठी भर अंग्रेजों ने संभाला कैसे? क्या सिर्फ ताकत के बल पर?
देखिए, ताकत तो थी ही। जैक्सन कहते हैं बल एक जरूरी स्तंभ था। उनके बेहतर हथियार, उनकी संगठित सेना
और रॉयल नेवी, समंदर पर तो उनका कोई जवाब नहीं था उस वक्त।
बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी फौज भेजना, व्यापारिक रास्ते कंट्रोल करना, ये सब नेवी की वजह से मुमकिन था। और जमीन पर ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय सैनिक भी थे।
हाँ, जैसे भारत की अपनी सेना जो साम्राज्य के लिए लड़ी।
जी, तो बल का प्रयोग और उसका डर, वो तो हमेशा मौजूद था। विद्रोह को कुचलने के लिए वो तैयार रहते थे।
लेकिन
क्या सिर्फ इसी से बात बन सकती थी, इतने बड़े पैमाने पर, इतने लंबे समय तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं जैक्सन दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी स्तंभ सामने लाते हैं, सहयोग।
सहयोग,
वो तर्क देते हैं कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से इतना बड़ा, इतना फैला हुआ सिस्टम चल ही नहीं सकता था। बहुत महंगा पड़ता और शायद असंभव भी होता।
तो फिर किसका सहयोग?
स्थानीय समाज के महत्वपूर्ण तबकों का। जैसे वहां के जो एलीट थे, राजा, महाराजा, नवाब, सरदार, उन्हें अंग्रेजों ने साथ मिलाया।
अच्छा, मतलब उनको उनकी गद्दी पर बने रहने दिया।
हाँ, कुछ हद तक उनकी सत्ता, उनकी हैसियत बनाए रखी। बस शर्त ये थी कि वो अंग्रेजों के वफादार रहें। इसे ही अप्रत्यक्ष शासन या इनडायरेक्ट रूल कहते हैं। ये एक बहुत कारगर रणनीति थी।
स्थानीय ताकतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना।
बिल्कुल, और सिर्फ शासक वर्ग ही नहीं, स्थानीय व्यापारी, जमींदार, पढ़े लिखे लोग जिन्हें प्रशासन में नौकरियां मिली, क्लर्क, पुलिस वाले, छोटे अफसर, ये सब भी तो सिस्टम का हिस्सा बन गए।
हाँ, बात तो सही है। रोजमर्रा का काम तो असल में यही लोग चला रहे थे।
जी, तो ये ताकत और साझेदारी का एक बहुत ही जटिल और कई बार नैतिक रूप से मुश्किल संतुलन था।
इसी से साम्राज्य टिका रहा। अब बात करते हैं उन करोड़ों लोगों की जो इस साम्राज्य के भीतर रह रहे थे। एक तरफ तो थे अंग्रेज प्रशासक, फौजी, मिशनरी, व्यापारी, और वो लाखों लोग जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में बसने गए।
जी, और दूसरी तरफ थे उपनिवेशों के करोड़ों निवासी, जिनकी अपनी भाषाएं थीं, अपनी संस्कृतियां, अपने समाज थे। जैक्सन दिखाते हैं कि अंग्रेजी शासन ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों की पहचान को भी बदलने की कोशिश की।
कैसे? पहचान को कैसे बदला?
जैसे भारत में जनगणना हुई तो जाति और धर्म की श्रेणियां और ज्यादा पक्की और औपचारिक हो गईं। फिर मार्शल रेस या लड़ाकू जातियों जैसी धारणाएं बनाई गईं कि फौज में भर्ती के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है।
अच्छा, मतलब समाज को बांटने और समझने का एक नया तरीका थोपा गया।
हाँ, और कई बार इसने समुदायों के बीच पुराने तनावों को हवा दी या नए तनाव पैदा किए। बांटो और राज करो की नीति तो थी ही।
और साम्राज्य के भीतर लोगों की आवाजाही भी बहुत हुई है ना?
हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। गुलामी के दौर में लाखों अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती अमेरिका और कैरिबियन ले जाया गया। फिर लाखों अंग्रेज, आयरिश, स्कॉटिश लोग बाहर जाके बसे।
और गिरमिटिया मजदूर,
उनका जिक्र भी आता है।
बिल्कुल, लाखों भारतीय और चीनी मजदूरों को चुक्तिबद्ध इंडेंचर्ड करके कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर ले जाया गया, बागानों में, रेल लाइनों पर काम करने के लिए। उनकी कहानी भी साम्राज्य की कहानी का एक अहम हिस्सा है।
अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अक्सर ये कहा जाता है कि साम्राज्य मतलब सिर्फ लूट खसोट। क्या जैक्सन भी यही मानते हैं?
वो मानते हैं कि शोषण जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं। उपनिवेशों के संसाधन ब्रिटेन की तरफ बहाए गए, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक ब्रिटेन केंद्रित वैश्विक आर्थिक और वित्तीय प्रणाली बनाने की कोशिश भी थी।
अच्छा, किस तरह की प्रणाली? शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक कंपनियों का एकाधिकार था। बाद में 19वीं सदी में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का सिद्धांत आया।
लेकिन क्या ये व्यापार वाकई मुक्त था, सबके लिए बराबर?
नहीं, कहने को मुक्त था, पर असल में पड़रा हमेशा ब्रिटेन के हक में झुका रहता था। ब्रिटेन में मशीनों से बने सस्ते कपड़े और दूसरे सामान ने उपनिवेशों के बाजार भर दिए,
जिससे वहां के स्थानीय उद्योग, जैसे भारत का कपड़ा उद्योग, वो तबाह हो गए।
बिल्कुल, और उपनिवेश मुख्य रूप से कच्चे माल के सप्लायर बन गए। कपास, जूट, रबड़, चाय, कॉफी, टिन, हीरे, ये सब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों और बाजारों के लिए।
और इसमें लंदन शहर की क्या भूमिका थी?
लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर बन गया। ब्रिटिश बैंक और कंपनियां साम्राज्य भर में निवेश कर रही थीं। रेलवेज में, बंदरगाहों में, खदानों में, बागानों में।
पर ये निवेश क्यों किया जा रहा था? क्या स्थानीय विकास के लिए?
देखिए, विकास तो हुआ, जैसे रेलवे लाइनें बिछीं, बंदरगाह बने, इनसे लोगों को कुछ फायदा भी हुआ, सफर आसान हुआ, माल ढुलाई हुई। लेकिन जैक्सन कहते हैं कि इनका मुख्य मकसद रणनीतिक नियंत्रण और संसाधनों को आसानी से ब्रिटेन तक पहुंचाना था।
मतलब विकास ऐसा जो ब्रिटेन के फायदे में हो।
हाँ, ज्यादातर। और इसका नतीजा ये हुआ कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाएं ब्रिटेन पर निर्भर हो गईं, उनकी अपनी स्वतंत्र आर्थिक तरक्की रुक गई। ये एक जटिल विरासत है।
अब संस्कृति की बात करते हैं। क्या अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश की?
कोशिश तो की, एक जोरदार विचार था सिविलाइजिंग मिशन का।
हाँ, ये कि वो दुनिया को सभ्य बनाने आए हैं।
जी, ईसाई धर्म फैलाना, पश्चिमी शिक्षा देना, अंग्रेजी कानून लागू करना, ये सब इसी सोच का हिस्सा था। मैकॉले का मशहूर मिनट याद है?
हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे भारतीय बनाने हैं जो खून और रंग से भारतीय हों, पर सोच, पसंद और समझ में अंग्रेज।
बिल्कुल, तो वो कोशिश तो थी, स्कूल खोले गए, मिशनरी काम कर रहे थे।
लेकिन क्या ये पूरी तरह एक तरफा था? क्या ब्रिटेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा?
नहीं, जैक्सन कहते हैं असर दो तरफा था। हाँ, बराबरी का नहीं था, सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन ब्रिटेन संस्कृति भी बदली।
कैसे?
अरे, खाने को ही देख लीजिए। करी आज ब्रिटेन की नेशनल डिश मानी जाती है, चाय पीने की आदत, भाषा में कितने ही शब्द, बंगला, पजामा, लूट, ठग, ये सब भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में गए।
हाँ, ये तो है।
कला पर, साहित्य पर, सोच पर भी असर पड़ा, और उपनिवेशों में भी लोगों ने अंग्रेजी संस्कृति को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया, उन्होंने उसका विरोध किया, उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला और नई मिलीजुली हाइब्रिड संस्कृतियां बनाई।
ये दिलचस्प है। जैसे क्रिकेट का उदाहरण दिया जाता है, अंग्रेज लाए, पर आज जिस तरह भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज में खेला और जिया जाता है वो बिल्कुल अलग है।
एकदम सही। क्रिकेट या फिर स्काउट मूवमेंट या शाही परिवार से जुड़ी छुट्टियां और समारोह, इन सबको एक साझा शाही पहचान बनाने और वफादारी बढ़ाने के एक औजार की तरह भी इस्तेमाल किया गया।
अब आते हैं आखिरी दौर पर, साम्राज्य का अंत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये इतनी तेजी से कैसे बिखर गया? क्या वजहें थीं?
कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली तो ये कि दो विश्व युद्धों ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी।
हाँ, वो अब पहले जैसी महाशक्ति नहीं रहा था।
बिल्कुल, अब उसके पास इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की न तो ताकत बची थी, न शायद उतनी इच्छा।
और दूसरी तरफ उपनिवेशों में क्या हो रहा था?
वहां राष्ट्रवाद की लहर जोरों पर थी। एशिया और अफ्रीका में आजादी के आंदोलन बहुत मजबूत हो चुके थे। भारत में गांधी, नेहरू, पटेल, अफ्रीका में क्रुमा, केन्याटा जैसे नेता।
हाँ, वो पूरी ताकत से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और उन्हें जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा था।
जी, और तीसरा बड़ा कारण था अंतर्राष्ट्रीय दबाव,
अमेरिका और सोवियत संघ।
हाँ, दोनों ही नई महाशक्तियां पुराने यूरोपीय साम्राज्यवाद के खिलाफ थीं, अपने अपने कारणों से। फिर संयुक्त राष्ट्र यूएन भी बन गया था, जो उपनिवेशवाद की समाप्ति की वकालत कर रहा था।
तो इन सब दबावों के चलते ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा।
हाँ, एक एक करके उन्हें अपने उपनिवेश छोड़ने पड़े, लेकिन ये वापसी भी हर जगह एक जैसी नहीं हुई।
कहीं शांति से सत्ता सौंपी गई जैसे भारत में, हालांकि विभाजन की भारी हिंसा और त्रासदी के साथ।
हाँ, वो शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी बहुत रक्तरंजित साबित हुआ, और कहीं जैसे केनिया, मलाया या साइप्रस में लंबी और हिंसक लड़ाइयां हुई आजादी के लिए,
और फिलिस्तीन जैसी जगहों पर,
वहां ब्रिटेन ऐसी उलझी हुई समस्याएं छोड़कर गया जिसका समाधान आज तक नहीं निकल पाया है।
तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन जैक्सन जोर देते हैं कि उसकी विरासत, वो आज भी जिंदा है, और ये विरासत बहुत मिलीजुली, बहुत जटिल है।
बिल्कुल। अब अगर हम जैक्सन के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें, कुछ की थीम्स निकालें, तो सबसे पहली शायद यही होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य कोई एक चीज नहीं था, बल्कि बहुत विविध और लचीला ढांचा था।
हाँ, ये पैचवर्क एम्पायर वाली बात, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके, इसी किसी एक फॉर्मूले में बांधना मुश्किल है।
दूसरी अहम बात, इसने दुनिया की पहली सही मायनों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी। इसने दुनिया को जोड़ा, व्यापार बढ़ाया, लेकिन साथ ही गहरी आर्थिक असमानताएं भी पैदा की,
जिसका असर अवाक्स की ग्लोबल इकोनॉमी में भी दिखता है। क्यों कुछ देश विकसित हैं और कुछ विकासशील, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस दौर में हैं।
तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान का। ये सिर्फ एक तरफा नहीं था, अंग्रेजी भाषा फैली, पश्चिमी विचार आए, लेकिन ब्रिटिश संस्कृति भी प्रभावित हुई और उपनिवेशों ने इन चीजों को अपने तरीके से अपनाया और बदला।
हाँ, वो क्रिकेट वाला उदाहरण याद आता है।
जी, और चौथा, प्रतिरोध और सहयोग का वो जटिल ताना बाना। ये समझना कि जिन पर राज किया गया वो सिर्फ निष्क्रिय शिकार नहीं थे, उन्होंने विरोध किया, संघर्ष किया, परिस्थितियों के हिसाब से ढले और हाँ, कई बार व्यवस्था का हिस्सा भी बने।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल। और पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसकी विरासत और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। साम्राज्य का इतिहास खत्म नहीं हुआ है।
हाँ, ये आज भी हमारी राजनीति में, हमारी सीमाओं में, जैसे भारत पाक विभाजन की यादें, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में जिंदा है।
जैक्सन के काम में कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वो कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य कोई एक इकाई नहीं था, बल्कि चार शताब्दियों में विकसित हुए विभिन्न शाही संबंधों का एक संग्रह था।
हाँ, ये इसकी विविधता और जटिलता पर जोर देता है।
फिर एक और बात, साम्राज्यवादी शासन हमेशा एक बातचीत की प्रक्रिया थी, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय आबादी के बीच निरंतर अनुकूलन और समझौता शामिल था।
इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक था, बल्कि ये कि सत्ता सिर्फ थोपी नहीं जाती, उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका, चाहे वो प्रतिरोध हो या सहयोग, वो भी मायने रखती है।
जी, और एक और विचार, साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत शायद आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की पहली सही मायने में वैश्विक प्रणाली बनाने में इसकी भूमिका है।
ये इसके विश्व ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है, भले ही उसके परिणाम सबके लिए बराबर न रहे हों।
और अंत में, उपनिवेशवाद की समाप्ति केवल साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि शाही संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के नए रूपों में परिवर्तन था।
हाँ, ये निरंतरता की ओर इशारा करता है, जैसे कॉमनवेल्थ का बनना या आर्थिक निर्भरता के रिश्ते जो आज भी कायम हैं।
तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है, हम इस समझ का क्या करें?
पहला तो ये कि आज दुनिया में जो बहुत सारे संघर्ष हैं, खासकर पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में, चाहे वो मध्य पूर्व हो, अफ्रीका हो या हमारे अपने पड़ोस में।
हाँ, उनकी जड़ें समझने में मदद मिलती है। कई सीमाएं तो औपनिवेशिक ताकतों ने ही खींची थी, बिना स्थानीय हकीकतों का ध्यान रखे।
बिल्कुल। दूसरा, वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता पर जो बहसें चलती हैं, उन्हें एक ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है।
हाँ, कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी कैसे बनी, उसमें किसका फायदा ज्यादा हुआ, किसका कम, ये समझने के लिए औपनिवेशिक इतिहास को देखना जरूरी है।
तीसरा, मल्टीकल्चरलिज्म और पहचान की राजनीति को समझने में मदद मिलती है, चाहे वो ब्रिटेन में अप्रवासी समुदायों का इतिहास हो या भारत जैसे देश में विभिन्न समुदायों के बीच के रिश्ते।
जी, क्योंकि औपनिवेशिक नीतियों ने कई बार पहचानों को गढ़ा, बदला या उनके बीच तनाव पैदा किया।
और आखिर में, ये हमें इतिहास को और राष्ट्रवाद को ज्यादा आलोचनात्मक नजरिए से देखना सिखाता है।
हाँ, कि सत्ता कैसे काम करती है, राष्ट्रीय मिथकों पर सवाल कैसे उठाएं और चीजों को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नजरियों से देखें।
तो अगर हम अपनी बात करें तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य जैसे जटिल विषय को समझने के लिए हमें अति सरलीकरण से बचना होगा। न सिर्फ वावाई, न सिर्फ गाली गलौज, बल्कि एक बारीक सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है।
और मेरे लिए शायद ये समझना सबसे अहम रहा कि कैसे ताकत और सहयोग के उस अजीब से मिश्रण ने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया और कैसे उसकी विरासत, अच्छी और बुरी दोनों, आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। ये इतिहास वाकई सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी दुनिया में रचा बसा है।
बिल्कुल। और यही एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अपने आसपास देखिए, क्या आपके शहर, आपके मोहल्ले में कोई सड़क, कोई इमारत, कोई संस्था है जिसका नाम या जिसकी कहानी ब्रिटिश काल से जुड़ी हो? हमारी भाषा में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे खाने पीने में, यहाँ तक कि हमारे सोचने के ढंग में, साम्राज्य की कौन सी ऐसी बारीक निशानियां हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।